नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, देश की समृद्धि और विकास के लिए आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण। आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत मोरक्को में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का पहला खंड 2027 तक शुरू होगा। ईरान ने कहा, वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी अनुचित दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही चेतावनी दी, ऐसे कदम तनाव बढ़ा सकते हैं। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का आह्वान करते हुए कहा है कि विदेशों पर भारत की निर्भरता उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दुनिया के सामने एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में खड़ा हो।
भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के दुश्मन को, निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा।
प्रधानमंत्री आज भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत को एक समुद्री महाशक्ति बनाने के अपनी सरकार के दृष्टिकोण के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को 3 गुना करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 7,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई प्रमुख समुद्री परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
21वीं सदी का भारत आज समुद्र को बहुत बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट को गति देने के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। देश में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आज मुंबई में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के तट हमेशा से समृद्धि के प्रतीक रहे हैं और इससे समुद्री तट भारत के भविष्य के विकास के प्रवेश द्वार बनेंगे। उन्होंने समुद्री क्षेत्र को कमजोर करने के लिए पिछली सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि लाइसेंस राज व्यवस्था और वैश्वीकरण के बाद की नीतियों के कारण विदेश देशों पर निर्भरता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र जल्द ही एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया को अपनाएगा, जिसका उद्देश्य पूरे देश में बंदरगाह प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत का उदाहरण दिया।
इतना विशाल आईएनएस विक्रांत भी भारत में ही बना है। इसे बनाने के लिए जो हाई क्वालिटी स्टील लगी वो भी भारत में बनी थी। जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है उसका भरोसा मैं आज देशवासियों को दे रहा हूं। बैंकों से लोन मिलने में आसानी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के जितने भी और लाभ होते हैं वो सारे के सारे इन जहाज बनाने वाली कंपनियों को भी मिलेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार से मोरक्को की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। ये किसी रक्षा मंत्री की उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्र की पहली यात्रा होगी। उनका यह दौरा भारत और मोरक्को के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री बर्शीद में टाटा एडवांस सिस्टम्स मोरक्को के व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म के नए विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन में शामिल होंगे। यह अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है। यह आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत रक्षा उद्योग की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथानी ड्रोइन के साथ बैठक की थी। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने आतंकवाद निरोध, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने और खुफिया जानकारी साझा करने सहित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर उपलब्ध हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का पहला खंड 2027 तक शुरू हो जाएगा। नवी मुंबई में घनसोली और शिलफाटा सुरंगों के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने इस सुरंग के निर्माण को बुलेट ट्रेन परियोजना में महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि परियोजना में 320 किलोमीटर लंबा पुल बनकर तैयार है। साबरमती सुरंग का निर्माण कार्य पूरा होने को है।
करीब करीब मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में 320 किलोमीटर का ब्रिज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इस प्रोजेक्ट के बनने से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में माने प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा हम सब के लिए कंफर्टेबल 2 घंटे 7 मिनट की यात्रा हो जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देश के कर व्यवस्था में सुधार की घोषणा की थी ताकि आम जनता पर से आर्थिक बोझ कम हो। नई दरें आगामी सोमवार से लागू हो रही हैं। आज इस क्रम में हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षेत्र पर जीएसटी सुधार के प्रभावों पर चर्चा कर रहे हैं।
सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती करके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बड़ी राहत दी है। बिजली यंत्रों पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। कंपोस्टिंग मशीनों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टू वे रेडियो प्रणाली पर कर की दर भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष संदीप नरूला ने कहा कि कर कटौती के कई फायदे होंगे और देश में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में वृद्धि होगी,
बिक्रीकरण बढ़ेगा और हमारी कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती हैं उनको भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जब वॉल्यूम बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, तो एक्सपोर्ट में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है और हम एक बड़े डिफाइंड प्राइस मैकेनिज्म से प्राइस को कोट कर पाएंगे एक्सपोर्ट पे। साथ साथ ही कंप्लायंस की भी हमें एडवांटेज रहेगी।
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत इस युक्तिकरण से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की पहुंच और सामर्थ्य में वृद्धि होने और घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार का आकार बढ़ने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सेवा सुशासन से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कैसे मोदी सरकार ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच लोगों तक सुनिश्चित की है।
पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया है। 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहा। यह योजना प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। भारत की 40% गरीब आबादी को लक्षित करते हुए ये योजना 12 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करती है और लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों को लाभान्वित करती है। पिछले वर्ष 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान व्यय वंदना योजना के दायरे में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा की।
सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं।
लाभार्थी ईशान श्रीवास्तव ने आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनके परिवार के सदस्यों का कम खर्च में सही इलाज करने में मदद मिली।
इस कार्ड से हमारा जैसे कि पेसमेकर लगा है तो 83,280 रुपीज का इस कार्ड से पेमेंट हुआ अप्रूवल होकर। कार्ड नहीं होता तो हमें स्थिति नहीं थी कि हम इनका पेसमेकर करवा पाते।
ये योजना 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए आसान और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं देश के लाखों स्कूलों और लगभग 500 सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। ये फिल्म प्रधानमंत्री मोदी के बचपन की एक घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में स्वामी विवेकानंद के दर्शन से प्रभावित होकर किशोरवय नारू अपनी छोटी सी दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करता है। पीवीआर आईनॉक्स के सीईओ श्री गौतम ने चलो जीते हैं फिल्म पर अपने विचार साझा किए।
ये चलो जीते हैं एक ऐसी फिल्म है जो नरेंद्र मोदी जी की पूरी जिंदगी की जर्नी पे आधारित है। कितने मेहनत और कितनी लगन से एक चीज के पीछे जब वो लगे तो उन्होंने वो काम करके दिखाया।
ब्रिटेन की सेमीकंडक्टर कंपनी एआरएम अब भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स बनाएगी। ये चिप्स बेंगलुरु में ही डिजाइन किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआरएम के नए ऑफिस का उद्घाटन करते हुए ये जानकारी दी। इन चिप्स का इस्तेमाल एआई सर्वर ड्रोन और मोबाइल फोन में किया जाता है। श्री वैष्णव ने बताया कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का एक बड़ा लक्ष्य प्रतिभा को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल चिप्स ही नहीं बल्कि आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों का भी निर्माण भारत में करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अंतर्गत 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 72 कंपनियां अब उन्नत डिजाइन उपकरणों का उपयोग करती हैं। बिहार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया जी में पिंडदान किया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उनके साथ मंदिर परिसर तक गए। राष्ट्रपति 2 घंटे से अधिक समय तक मंदिर में रहीं और सभी अनुष्ठान संपन्न किए। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वो एक विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने कहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी अनुचित दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदम तनाव बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा ईरान लगातार कूटनीति और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाता रहा है। श्री अराग्ची ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही। ये बातचीत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 2015 के परमाणु समझौते के अंतर्गत प्रतिबंधों में छूट बढ़ाने वाले प्रस्ताव को पारित नहीं हो पाने के बाद हुई है। अमेरिका ने सीरिया के लिए अस्थायी संरक्षित स्थिति का दर्जा समाप्त कर दिया है। साथ ही सीरियाई प्रवासियों को चेतावनी दी है कि अगर वे 60 दिन के भीतर देश नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया जाएगा। रूस स्थित सारातोव और समारा प्रांतों में यूक्रेन के ड्रोन ने आज कथित तौर पर तेल रिफाइनरों पर हमला किया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कीव रूसी तेल और गैस अवसंरचना के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर रहा है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के आरुण चिया और सो वी इक की जोड़ी से होगा। सात्विक और चिराग का इस साल का यह 7वां सेमीफाइनल मुकाबला होगा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में इस जोड़ी ने चीन के रेन जियांग यू और झी हाओनान को आसानी से पराजित किया। दुबई में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 चरण के पहले मैच में आज रात 8 बजे श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। रविवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। 25 सितंबर तक मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा देश की समृद्धि और विकास के लिए आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण। आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत मोरक्को में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का पहला खंड 2027 तक शुरू होगा। ईरान ने कहा वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी अनुचित दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही चेतावनी दी ऐसे कदम तनाव बढ़ा सकते हैं। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।